When you need to do more with less, Upwork helps you hire fast without the overhead. Find expert freelancers in design, marketing, IT, AI, and more. Never tried Upwork? Now's the perfect time. Spend your first $1,000 and get $200 in credit for your next project. No upfront costs. No long-term commitments. Just $200 to reinvest in what matters. Go to Upwork.com/save to get started. That's UPWORK.com/SAVE. Upwork.com/save.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
प्रस्तुत है आज का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। ईरानी सरकारी मीडिया ये रिपोर्ट कर रही है कि उनके विदेश मंत्री आने वाले 24 घंटे में जिनेवा में जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के समकक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक का कहना है कि ये आगामी बैठक एक महत्वपूर्ण कदम रहेगी। साथ ही मिडिल ईस्ट देशों के बीच संघर्ष में शामिल होने या न होने का फैसला करने के लिए अमेरिका ने खुद को 2 हफ्ते का समय दिया है। आपको बता दूं कि इसके बाद ईरान और इसराइल छोड़ने की कोशिश कर रहे ऑस्ट्रेलियाई लोगों की मदद के लिए सेना को बुलाया जाएगा। ऐसे में विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा है कि सरकार ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल को लड़ाकू भूमिकाओं में नहीं बल्कि केवल नागरिकों और निवासियों की सहायता के लिए भेज रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ईरान और इसराइल में फंसे ऑस्ट्रेलियाई लोगों को घर वापस लाने की हर संभव कोशिश में है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान की राजधानी तेहरान में अपने दूतावास में कामकाज बंद कर दिया है और सभी ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों को वहां से जाने का आदेश मिला है। विदेश मंत्री ने अपने अमरीकी समकक्ष मार्को रूबियो के साथ मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बारे में बातचीत भी की है। वहीं अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अमरीकी हमले पर विचार कर रहे हैं और अगले 2 हफ्ते के भीतर इस पर निर्णय लेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का कहना है कि ट्रंप को अभी भी उम्मीद है कि अमरीका ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम के बारे में बातचीत में प्रगति कर सकता है, लेकिन उन्होंने समझौते पर पहुंचने के लिए समय सीमा तय की है। गाजा में फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है 72 लोगों को मार डाला है, जिसमें कि 21 लोग सहायता वितरण स्थलों के पास एकत्र हुए थे। हमास के एक अधिकारी ने बताया है कि दक्षिणी गाजा स्ट्रिप में सहायता का इंतजार करते समय 6 लोग और नेत्सारिम कॉरिडोर में 15 अन्य लोग मारे गए हैं, जहां हजारों फिलिस्तीनी रोजाना भोजन राशन प्राप्त करने के लिए एकत्र होते हैं। वहीं आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर नेता फेडरल राज्य और क्षेत्रीय स्तर के स्वदेशी मामलों के मंत्रियों के साथ बैठक के लिए आज डार्विन में एकत्र होंगे। 80 से अधिक प्रथम राष्ट्र समूह और 800 से अधिक समुदाय नियंत्रित संगठन कॉलेशन ऑफ पीक्स के हिस्से के रूप में उपस्थित होंगे। आपको बता दें कि ये साल में 2 बार होने वाली बैठक है और समूहों का कहना है कि ये युवा न्याय सुधार सहित उन मुद्दों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है जिन पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। बात करें न्यू साउथ वेल्स की तो NSW का सबसे व्यस्ततम कोर्ट हाउस सिडनी डाउनिंग सेंटर इस हफ्ते की शुरुआत में बाढ़ से हुए नुकसान के बाद कम से कम 1 महीने के लिए बंद रहेगा। इस न्यायालय को पास की एक सड़क पर पानी की पाइप फटने के कारण बंद कर दिया गया था, जिससे कि इस कानूनी इमारत की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। बात करें भारत की तो एयर इंडिया ने एक बार फिर अपनी कई उड़ान सेवाएं रद्द कर दी हैं। इस एयरलाइन की ओर से अब तक 4 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों समेत 8 फ्लाइट्स को रद्द करने की सूचना आई है। एयरलाइन ने बताया है कि शुक्रवार को रखरखाव और परिचालन संबंधी कारणों से एयर इंडिया ने 4 अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं और 8 उड़ानों को रद्द कर दिया। साथ ही उन्होंने बताया है कि यात्रियों के लिए जल्द से जल्द अपने गंतव्यों तक उड़ान भरने के लिए ग्राउंड पर एयर इंडिया की टीम वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।